الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلة ہے آسان درس قرآن آج سورة البقرة کی آیت نمبر 163 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور یہ وہ عظیم آیت ہے کہ جسے اسم اعظم قرار دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی روایات میں یہ موجود ہے کہ یہ آیت مبارکہ اسم اعظم ہے اور اسم اعظم وہ ہے کہ جسے پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں چونکہ کافروں کا تذکرہ تھا اور اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت قدرت اور خالق ہونے کے دلائل کا بیان ہے اور پھر اس سے آگے بھی چونکہ مشرکوں کے اعمال اور عقائد کا بیان ہے تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بڑا واضح اعلان فرما دیا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت مہربان رحمت والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں جو اس کے وجود پر، جو اس کی عظمت پر، جو اس کی قدرت پر اور جو اس کی رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ خدا کی عظمتوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے اور اس کی قدرت سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے، اس نے اپنی قدرت سے آسمان و زمین بنائے، پیدا کیے۔ پھر رات اور دن کا جو بدلنا ہے کہ رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ پھر سمندر میں چلنے والی کشتیاں جو لوگوں کے منافع اور سامان اور اسباب تجارت لے کے سمندر میں رواں دواں ہوتی ہیں۔ پھر آسمان سے اترتا ہوا پانی، تو ہے تو پانی لیکن اس کے ساتھ خدا مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ بنجر زمین ہوتی ہے، وہاں لہلہاتے کھیت اور ہرے بھرے باغات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کا نظام چلتا ہے، کہیں شرق سے غرب کو ہوائیں چلتی ہیں، کہیں مغرب سے مشرق کی طرف ہوائیں چل رہی ہیں، تو یہ جو ہواؤں کی رفتار ہے اور جو ہواؤں کا چلنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بادل آسمان و زمین کے درمیان خدا کے حکم کے پابند ہیں کہ خدا جہاں برسنے کا حکم دیتا ہے بادل وہیں جا کے برستے ہیں، بادل اٹھتے ہیں سمندر سے اور برستے ہیں جا کے 1000 کلومیٹر دور کے علاقے پر، تو کہاں سے اٹھے اور خدا نے کہاں جا کے برسایا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ کائنات کے اندر جتنے بھی تغیرات اور جتنے بھی یہ ساری کی ساری اشیاء نظر آتی ہیں، रब फरमाता है कि ये निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की, लेकिन किन के लिए? फरमाया कि जिनमें समझ है, जो गौर व फिक्र की सलाहियत रखती है, जिनमें अक्ल है, जो सोचते हैं कि ये सारा निज़ाम जो चल रहा है और इतनी खूबसूरती के साथ चल रहा है और इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इसको चलाने वाला भी तो कोई होगा, एक छोटी से छोटी चीज़ भी किसी करने वाले और बनाने वाले के बगैर ना बनती है ना कुछ करती है। एक छोटा सा मोबाइल होता है, उसमें कोई 50-60 किस्म के फंक्शन होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि यकदम बैठे बैठे यहाँ पर कोई मोबाइल उगाए और यकदम खुद ही मोबाइल बन जाए, ऐसा नहीं होता। एक मोबाइल बनाने के लिए पीछे इतनी मशीनरियाँ हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने उसके पीछे दिमाग हैं, वो सब मिलकर सब इसके बाद जाके एक छोटा सा मोबाइल बनता है। तो ये जो इतनी बड़ी कायनात है, ये जो आसमान और ज़मीन है, और ये जो ज़मीन में हजारों लाखों करोड़ों चीज़ें फैली हुई हैं, ये सूरज चांद की गर्दिश है, ये दिन रात का आना जाना है, ये हवाओं का चलना है, ये बादलों का उठना है, ये कहीं पे जाके बरसना है, ये समंदरों की तुगयानी है, दरियाओं की रवानी है, कश्तियों का चलना है, ये सारे का सारा बगैर किसी करने वाले और बगैर किसी चलाने वाले के चल नहीं सकता। तो अल्लाह ताला फरमाता है अक्ल वालों के लिए इन सब चीज़ों में बड़ी निशानियाँ हैं। ये आयत मुबारक इस बात की भी दलील है कि अगर साइंस के इल्म को, अगर साइंस के इल्म को रब की मारिफत के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो साइंस का इल्म बड़ा मुफीद है और फिर नियत की वजह से सवाब बन जाएगा। लोगों के भले के लिए अगर साइंस इस्तेमाल की जाए तो भी सवाब है, और खुदा की मारिफत के हुसूल के लिए अगर साइंस का इल्म पढ़ा जाए, हासिल किया जाए, तो भी बहुत बड़ा सवाब है। इसके बाद फरमाया وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، ان معبودوں کو اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، और ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अगर जालिम देखते, जब वो अजाब को आँखों से देखेंगे, क्योंकि तमाम कुव्वत अल्लाह ही की है और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। पहले अल्लाह ताला की अजमतों का बयान किया, जिससे बंदे के दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा होती है और पता चलता है कि खुदा जैसा और कोई नहीं। लेकिन साथ ही आगे फरमाया कि इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के सिवा और चीज़ों को माबूद बना लेते हैं और फिर उन चीज़ों से ऐसा प्यार करते हैं जैसा प्यार खुदा से करना चाहिए। जैसे बुतपरस्त हैं, बुतपरस्तों को अपने बुतों से जितनी मोहब्बत होती है वो ऐसे ही है जैसे मुसलमानों को खुदा से होती है। हालांकि वो बुत नाकारा और बेबस और बेकस और कोई ताकत और कुदरत नहीं रखते। तो फरमाया कि कुछ लोग इसके बावजूद बुतों को माबूद बना लेते हैं और उनसे ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे खुदा से मोहब्बत की जाती है। लेकिन फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ईमान की आला तरीन निशानी यह है कि खुदा और खुदा का रसूल सारी कायनात से ज़्यादा महबूब हो जाए। हदीस मुबारक के अंदर भी बड़ी सराह से ये फरमाया गया कि ईमान की मिठास उसे नसीब होती है कि जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सारी कायनात से ज़्यादा हो जाए। तो ये ईमान की निशानी है। फिर फरमाया कि ये जालिम जो खुदा के माबूद होने का हक बुतों को देते हैं, फरमाया कि अगर ये अजाब को देख लेते, वो अजाब के जो इनको क़्यामत में मिलेगा, तो इनको पता चल जाता कि ये बुत जो है ये तो कुछ भी नहीं है, सारी कुदरत, सारा इख्तियार और सारी कुव्वत जो है वो अल्लाह के पास है और अल्लाह शदीद अजाब देने वाला है। फिर मजीद फरमाया कि क़्यामत के दिन ये जो बुतों के पुजारी हैं, इनका और बुतों का इसी तरह जिन लोगों ने दूसरों को गुमराह किया, उनका हाल क्या होगा? یعنی جو پیشوا ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں، ان کا آپس کے اندر کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ یہ جو پیشوا ہیں یہ اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، یہ بولیں گے بھی ہمارا تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں، نہ ہم نے تمہیں کبھی کچھ کہا، تم تو خود ہی گمراہ ہوتے پھرتے تھے، ہم تھوڑی تمہیں پکڑ کے گمراہ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے رشتے ناتے آپس میں ٹوٹ جائیں گے، دنیا میں تو ان کو لیڈر اور اپنا رہنما اور قائد اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، لیکن قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے تو یہی پیشوا جو بڑی محبت کے دم بھرتے تھے کہ جناب مجھے تو تم لوگوں سے بڑی محبت ہے، تم ہی تو میری قوت بازو ہو، یہ سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور یہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ اور جب پیشوا ایسا کریں گے تو جو متبعین ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے، اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے اب بیزار ہوئے۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ یہ ہے قیامت کے دن جو جاہل عوام ہوتی ہے اور جو جاہل پیروکار ہوتے ہیں، جو دنیا میں تو اپنے پیشواؤں پہ مرتے ہیں اور ان کے پیچھے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جب یہ قیامت میں دیکھیں گے کہ یہ سارے پیشوا لیڈر تو جناب کسی اور ہی جگہ جا کے بیٹھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہمارا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کہیں گے کاش کہ ایک مرتبہ دوبارہ لوٹ کے جانا مل جائے دنیا میں، پھر ہم ان کو بتائیں کہ جو تم ہم سے بیزار ہو ہم بھی تم سے بیزار ہیں، تمہارا ہم سے تعلق نہیں تو ہمارا بھی تم سے تعلق نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس یہ تمنائیں ہوں گی کہ کاش کے لوٹ کے چلے جائیں، کاش کے ایسا ہو جائے، یہ صرف حسرتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسرتیں جو ہے وہ انہیں دکھائے گا اور بس یہ حسرت کر سکیں گے، کر کچھ نہیں سکیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن اور دین اور اسلام کو چھوڑ کر اپنے لیڈروں کو معاذ اللہ جھوٹے خدا بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بس جو لیڈر کے منہ سے نکل گیا وہی سب کچھ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے نہ قرآن کو مانیں گے نہ حدیث کو مانیں گے، تو قیامت کے دن پھر حسرتیں کریں گے کہ کاش ایک مرتبہ لوٹ کے چلے جائیں اور پھر ہم ان پیشواؤں سے جا کے بیزاری کا اظہار کریں۔ تو اس لیے دنیا میں اگر دینی اعتبار سے جو پیشوائی ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور جو ان کے سچے غلام ہیں ان کے پاس، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، آئمہ مجتہدین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، تو یہ جو ہے دینی پیشوائی تو انہی کے پاس ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہوگا۔ لیکن جو دنیاوی امور ہوتے ہیں ان میں بھی جو پیروی کرنی ہو وہ اس کی جائے کہ جو پہلے خدا رسول کا تو پیروکار ہو، یہ نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن اس طرح کی جو تقلید اور غلامی ہے اس کے اوپر پچھتانا پڑے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا احسان بیان فرمایا کہ خدا نے زمین میں کتنی حلال پاکیزہ چیزیں پیدا فرمائی۔ حلال وہ ہے کہ جسے خدا نے حلال قرار دیا، پاکیزہ وہ ہے کہ جس کا شریعت کے اعتبار سے جائز اور حلت کا حکم ہے، جو شریعت نے حرام کر دیا کہ جیسے خنزیر کا گوشت کھانا یا شراب پینا تو یہ بھی حرام، اور اس کے علاوہ فی نفسی ہی حلال ہو لیکن اسے حاصل حرام طریقے سے کیا جائے تو وہ طیب نہیں ہے۔ जैसे मिसाल के तौर पे किसी का खाना चुरा लिया, किसी के पैसे चुरा लिए, तो अब खाना चुरा के खाया तो खाना वैसे तो हलाल ही था, लेकिन इस बंदे के हक में तैयब नहीं है, पाकीज़ा नहीं। तो फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने हलाल पाकीज़ा पैदा किया उसे खाओ और शैतान की पैरवी ना करो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो दुश्मन शैतान को समझना चाहिए। हमारा मामला ये है कि दुनिया में जो हमारे मफाद को नुकसान पहुंचाए वो तो हमारा दुश्मन है, लेकिन जो हमारे दीन और आखिरत को नुकसान पहुंचाने वाला है उसे दुश्मन नहीं समझते, उसके बारे में सोचते भी नहीं। फरमाया इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू इवल फहशा इव अन तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। शैतान तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देगा, और ये हुक्म देगा कि तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहो जो खुद तुम्हें मालूम नहीं। ये है शैतान का काम। शैतान बुराई का हुक्म देगा, बेहयाई का हुक्म देगा। बुराई का दायरा बड़ा वसी है, बुराई के अंदर हर बुरा काम, हर गुनाह शामिल है। तो शैतान जो है वो सूद खाने का, रिश्वत खाने का, हक तलफी करने का, माँ बाप को सताने का, दूसरों को दुख देने का, दिल आजारी करने का, हलाल हराम का फ़र्क ना करने का इसका कहेगा, और इसके साथ फरमाया कि तुम्हें वो बेहयाई का हुक्म देगा। तो बेहयाई शैतान की तरफ से, खुदा बेहयाई से मना करता है और हया का हुक्म देता है, शैतान हया से रोकता है और बेहयाई का हुक्म देता है। तो गौर कर ले कि हम रहमान की मानते हैं या शैतान की मानते हैं। और फरमाया कि शैतान तुम्हें कहता है कि अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम्हें खुद पता नहीं, जैसे किसी को खुदा का शरीक बना देना, हालांकि पता नहीं है कि इसकी हकीकत बनती क्या है, लेकिन फिर भी जो है वो मुशरिक शरीक ठहरा देते हैं। इसी तरह आजकल वो लोग कि जिन्हें खुदा के बारे में कुछ पता नहीं है, अपनी तरफ से अकीदे घड़ते रहते हैं, अपनी तरफ से नित नई बातें बनाते रहते हैं, जाहिल किस्म के लोग होते हैं, बैठे हुए बस जो है वो जो कोई स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बाद अपना अकीदा बना के बैठ जाते हैं। इसके बाद फरमाया वइदा क़ील लहुम तबिउ मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअ वला यहतदून। और जब उनसे कहा जाए कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो कहते हैं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, क्या अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ अक्ल रखते हों ना वो हिदायत याफ्ता हों। यह है एक आम किस्म का जवाब कि जो हमेशा से दिया जाता आ रहा है अभी तक, कि पिछले जमाने के लोगों से, मुशरिकों से भी जब कहा जाता ना कि भाई ये बुत तुम अपने हाथ से बनाते हो, ये तुम्हारे खुदा हो कैसे सकते हैं, इसको छोड़ो, तो वो कहते नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? कहते इसलिए कि हमने अपने बाप दादा को यही करते पाया। हमारे बाप दादा, परदादा, चाचा, ताया, ये सारे रिश्तेदार जो है ये इन्हीं बुतों को पूजते थे, तो हम इन्हें कैसे छोड़ दें, लिहाजा हम इन्हीं की पैरवी करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या ये अपने बाप दादा की बात मानेंगे अगरचे ना उनको अकल हो और ना हिदायत हो। बात यह है कि पैरवी तो की जाती है समझदारी की बात की, सही बात की, हिदायत की बात की, ना ये कि अगर पिछले लोग जो है को उल्टे काम करते आए हैं तो पैरवी के अंदर उल्टे काम करना शुरू कर दो। और यही वो उज्र है कि जो आज के ज़माने में भी लोगों में आम है, ख़ास तौर पे शादी ब्याह की रस्मों में, इसी तरह मौत मैयत की रस्मों में बहुत सी नाजायज खुराफात और बहुत सी जाहिलाना रसूमात जो है वो लोगों में राइज है। कभी समझाने जाएं कि भाई शादी पे ये ना करो, वो बोलते लो जी खानदान वाले क्या बोलेंगे, हमारे तो बड़े करते आए। खास तौर पे मौत मैयत के मौके पर तो ये होता है कि कहा जाए ना कि ये क्या जाहिलाना रस्में, ये क्या अजीबो गरीब सी चीज़ें तुमने शुरू की हुई हैं, तो अक्सर जवाब ये मिलता है जी हमने तो अपने बाप दादा को यही करते पाया, हमारी बरादरी का रिवाज ये है। तो बरादरी क्या होती है? बरादरी इसी को बोलते हैं ना जो बाप दादा करते आ रहे और सारा ये कुंबा कबीला मिल जाता, वही बरादरी होती है। तो ये एक आम जवाब है जो पिछले ज़माने के मुशरिक भी देते थे, बल्कि उससे भी पिछले ज़माने के, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने के मुशरिक भी, और उससे पहले हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने के लोग भी यही कहते थे कि जी हम वो बात कैसे छोड़े जो हमारे बाप दादा करते आए। तो अल्लाह ताला ने सब बातों का जवाब एक ही इरशाद फरमा दिया कि ये बाप दादा की पैरवी करेंगे अगरचे इनके बाप दादा को ना अकल हो ना हिदायत, ना इल्म है ना अकल है, और ये फिर भी कह रहे हैं उनकी पैरवी करेंगे। तो ये तो इंसानी अजमत ही के खिलाफ है। और इंसान की जो एक सही फितरत है ये उसके भी खिलाफ है कि इंसान सही बात की पैरवी ना करे बल्कि जाहिलों की पैरवी करे, इसलिए कि उसके बाप दादा। तो ये कुरान पाक में ये इश्काल कई जगह बयान किया गया मुशरिकों की तरफ से और कई जगह इसका रद्द किया गया। अब उसके बाद फरमाया व मसलुल्लज़ीना कफरू कमसलिल्लज़ी यनअकु बिमा ला यस्माउ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے گونگے اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ فرمایا کہ جیسے किसी जानवर को अगर पुकारा जाए तो जानवर को ये नहीं पता चलेगा कि हम उससे बात क्या कर रहे हैं। यानी हम किसी जानवर का अगर बोलें कि जनाब जरा वापस आ जाएं, थोड़ा सा इधर चलें, उसकी बात मान ले, तो जानवर के लिए क्या, उसके लिए तो हमारा चीखना और हमारा बोलना दोनों बराबर है क्योंकि उसको समझ ही। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन काफिरों का जो हाल है वो भी ऐसा ही है कि इन्हें हिदायत की बात की जाए तो इनकी नज़र में सिवाय चीखो पुकार के वो कुछ भी नहीं। या ये है कि ये जो अपने बुतों को पुकारते हैं तो ये बुतों को पुकारना ऐसे ही है कि मुंह से कोई अल्फाज बोल लें या चीहो पुकार कर लें। बुतों के लिए दोनों बराबर, ना उन्हें इनकी बातें समझ आएंगी ना इनकी चीहो पुकार समझ आएगी। तो फरमाया कि ये दिल के बहरे, दिल के गूंगे, दिल के अंधे हैं, ना इनके दिल सुनते हैं ना देखते हैं ना हक बात बोल सकते हैं, तो इनको समझ नहीं। इसके बाद अहले ईमान से खिताब है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए ईमान वालों, हमारी दी हुई सुथरी चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। ये कुरान पाक का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों से फरमाया कि हमने जो तुम्हें सुथरी चीजें दी हैं, जो पाकीजा चीजें दी हैं, जो फी नफ्सी ही भी हलाल हैं और जिन्हें हासिल भी हलाल तरीके से किया गया है, उन्हें खाओ। खुदा की तरफ से खाने पीने पे कोई रोक टोक नहीं, फरमाया खाओ, खा के खुदा का शुक्र अदा करो। ये अल्लाह ताला का इतना खूबसूरत फरमान है कि इसको कुरान मजीद में कई जगह बयान किया गया। फरमाया खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो। किसी जगह फरमाया कि कौन है जो अल्लाह के पाकीज़ा रिज़्क़ को हराम करार देता है। तो अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता कि ये चीज़ें ना खाओ, जो हराम है उनकी लिस्ट आगे भी आ रही है और इसके अलावा भी हदीसों में भी है, लेकिन जो हलाल चीज़ें हैं उसके खाने पे गिरफ्त नहीं, उसके खाने के ऊपर कोई अजाब नहीं। लिहाजा हजारों चीज़ें खाने की मौजूद हैं। इस वक्त तो दुनिया जहान में जितनी खाने की चीज़ें हैं हम तो उसकी डिशें गिन भी नहीं सकते। कश्मीरी खाने और हैं, बलूची और हैं, सिंधी और हैं, पंजाबी और हैं, और जो है वो इंडियंस और हैं, और थाई खाने और हैं, चाइनीज़ और हैं, कोरियन और हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, टर्किश, अरेबियन, हर तरह के खाने हलाल मौजूद है। सारे खाएं, सब खाएं, लेकिन नंबर एक माले हलाल से खाएं, नंबर दो खा के खुदा का शुक्र अदा करें, नंबर तीन खा के मस्तियां ना करें, नंबर चार खाते हुए गरीबों को भी याद रखें। तो अब ये करें उसके बाद जो मर्जी खाएं। खुदा ने ना मशरूबात से मना किया है और ना मतरूमात से मना किया है। जो आपके बस में है, जो आपकी पहुंच है, आप उसके मुताबिक लाइफ से इंजॉय करें, खुदा का शुक्र अदा करते रहें, खाएं पिए पहने रहें, जैसे चाहे जिंदगी गुजारें, लेकिन जो खुदा के अहकाम हैं बस उन पर अमल करें। तो फरमाया अगर खुदा के बंदे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसके बाद फरमाया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह फमनित्तुर गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह ने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त और वो जानवर हराम किए हैं जिसके ज़बह के वक्त गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया गया। तो जो मजबूर हो जाए, हालांकि वो ना ख्वाहिश रखने वाला हो और ना जरूरत से आगे बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हराम ये चीजें, तो ये जो खाने पीने की हराम चीजें हैं इसकी बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। अब मिसाल के तौर पे यहां जो चीजें हराम बयान की हैं, अब गौर करें, एक है मुर्दार। मुर्दार वो होता है कि जिसे शरई तरीके से ज़बह ना किया गया, जैसे मशीनी ज़बिया होता है या जैसे झटके का गोश्त है, ये है। बाकी जितने भी ये ऊँट है, गाय है, बकरी है, मुर्गी है, भेड़ है, ये जितनी चीज़ें हैं जो तरीके से ज़बह की जाती हैं इस्लामी तरीके के मुताबिक, ज़बह हलाल है। अच्छा, दूसरे नंबर पर फरमाया खून हराम है, बहता खून जो है ये हराम है, नापाक है, तो खून कौन खाता है। तीसरे नंबर पर फरमाया खिंजीर का गोश्त, तो आप देख ले, खिंजीर का गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो इस मुल्क में तो दस्तियाब भी नहीं होता, हलाल ही हलाल मौजूद है। और जहाँ पर बिलफर्ज खिंजीर का गोश्त है अभी मगरबी मुल्कों में, वहाँ भी हलाल गोश्त ढेरों ढेर मौजूद है। जितना खिंजीर का गोश्त है 10 गुना ज़्यादा दूसरा मिल जाएगा आपको। चौथा फरमाया कि वो जानवर कि जिसे अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह किया जाए, जैसे बुतपरस्त लोग जो हैं वो बुतों के नाम पर ज़बह करते थे, कि जैसे हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हम तकबीर ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो वो पढ़ते थे बिस्मिल्लात, यानी कि लात बुत के नाम पे ज़बह करता हूँ। तो ये जो बुतों के नाम पे ज़बह किया गया ये हराम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो ऐसा नहीं करते। तो मुशरिक जो करें वो हम नहीं खाएंगे, जो मुसलमान करते हैं वो अल्लाह के नाम पर करते। तो अब ये देखें कि ये चार किस्म की चीज़ें हैं, क्या इनसे बचना को बहुत मुश्किल है? बड़ा आसान है। और हलाल, हलाल का मैंने आपको बता दिया कि ये जितने हमारे सूबे हैं और जितने पास पड़ोस के ममालिक हैं, हर मुल्क की अपनी डिशें सारी खाओ। तो खुदा की तरफ से हलाल का दायरा बड़ा वसी है, लिहाजा हराम से बचना इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ज़्यादा नीयत के ऊपर मदार होता है कि अपनी नीयत बचने की है या नहीं। हाँ, आज के ज़माने में दो चीज़ों पर, एक चीज़ पर मैं तवज्जो कुछ दिलाऊँगा और दूसरी चीज़ की कुछ शरह करता हूँ। एक बात तो ये है कि अब दुनिया में चूंकि जो जोर है, जो इख्तदार और इख्तियार है वो गैर मुस्लिमों को है, लिहाजा अब ज़बीहे के मसले बढ़ गए कि ज़बीहे में मुसलमान या कोई किताबुल्लाह को मानने वाला अल्लाह के नाम पे ज़बह करे। लेकिन अब दुनिया में मशीनी ज़बीहा ज़्यादा हो गया, मशीन ज़बह करती है, तो मशीन ना जानदार है ना तकबीर पढ़े, वो हराम है, तो लिहाजा उससे एतराज़ करना चाहिए। दूसरे नंबर पे दुनिया भर में चूंकि गैर मुस्लिम जो है खिंजीर बहुत खाते हैं, गैर मुस्लिम खिंजीर सुअर बहुत खाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसका कोई ना कोई जूस जो है ना वो किसी ना किसी शय में डाल ही देते हैं। इसलिए यूरोपीय ममालिक से जो खाने पीने की चीज़ें या बल्कि उसके अलावा ये जो कॉस्मेटिक्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें भी बड़ी कसरत के साथ इनके अज्जा होते हैं। अगरचे शरी हुक्म यह है कि जब तक किसी शय का हराम होना या उसमें हराम का मिला होना हमें पता ना हो हम उसे हराम नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल ऐसा है ज़रूर कि ये कसरत के साथ अपने खिंजीर के अज्जा या शराब वगैरह जो है ये चीज़ों में डालते हैं, तो उन चीज़ों में बहरहाल एतराज़ जो है वो करना होगा। तो एक मसला तो ये, दूसरा मसला ये है कि गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करने का मतलब यही है कि जिसको ज़बह करते हुए गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। अगर ज़बा अल्लाह के नाम पे किया और उससे पहले किसी और का नाम ले लिया तो इससे जानवर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक जानवर ज़बा फरमाया तो फरमाया कि ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से, फिर उसके बाद अल्लाह के नाम पे ज़बा कर दिया। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का नाम लिया, जानवर के ऊपर ही नाम लिया, लेकिन ज़बा अल्लाह के नाम पर किया, तो लिहाजा पहले जो इसाले सवाब के लिए नाम आ जाए ना कि ये मेरी उम्मत की तरफ से है, तो ये है सवाब के लिए नाम, ज़बा अल्लाह के नाम पे। इसी तरह मुसलमानों में दुनिया भर में राइज है कि औलिया किराम के नाम पर बकरे जानवर जो है वो पालते हैं, गौसे पाक का बकरा, फुलां का बकरा, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मादल्लाह वो ज़बा करते हुए ये कहते हैं कि इसे मैं गौसे पाक के नाम पर ज़बा करता हूँ या इसमें फलां वली के नाम पे ज़बह करता, ऐसा कोई करे तो ये हराम हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये इसाले सवाब के लिए नाम होता है कि ये जो मैं जानवर ज़बह कर रहा हूँ इसके ज़बह करने पर जो मुझे सवाब मिलेगा, इसके सदका करने पर, इसका गरीबों को खिलाने पर जो मुझे सवाब मिलेगा वो मैं अपने फलां पीर को, बुज़ुर्ग को, वालिदैन को या फलां वली को मैं इसका सवाब पेश करता हूँ। तो ये नाम लेना जो है ये महज इसाले सवाब की सूरत है, जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत का नाम लिया। ज़बा वो अल्लाह के नाम, वो बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर ही ज़बा किया जाता है। तो लिहाजा ये मसला जो है ये जहन में रखा जाए। अच्छा, इसके बाद ये फरमाया कि हाँ, ये जो चीरे हराम है, मुर्दार खून है, खिंजीर का गोश्त है, या और जानवर और जो जिनकी हुरमत बयान की गई, अगर कोई बंदा हालत इज़्तिरार में हो, हालत इज़्तिरार का मतलब है कि ऐसा मजबूर हो जाए इसके खाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, जैसे किसी बंदे के पास खिंजीर का गोश्त है या मुर्दार का गोश्त है, अब खाने को है ही कुछ नहीं, अब अगर ये नहीं खाएगा तो मर जाएगा, अगर ये नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो फरमाया कि ऐसी सूरत में ये उसमें से थोड़ा सा खा ले, ना तो ख्वाहिश से खाए और ना ज़रूरत से ज़्यादा खाए, तो अब इतना खा ले कि जिससे इसकी जान बच जाए। इसी तरह कोई आदमी प्यास से मर रहा है और उसके पास शराब के अलावा कुछ नहीं, अब अगर शराब पीता है तो बचेगा वरना नहीं बचेगा, तो अब इसके लिए जायज़ है कि ये शराब पी ले। तो ये है हालत मजबूरी का बयान। तो मजबूरी के अंदर कई चीज़ों की इजाज़त हो जाती है। इसके बाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन क़लीलन उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन्नार इल्लन्नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम वलहुम अदाबुन अलीम। बेशक वो लोग जो अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले जलील कीमत लेते हैं, वो अपने पेट में आग ही भरते हैं, और अल्लाह कियामत के दिन उनसे ना कलाम फरमाएगा और ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इससे मुराद बनी इसराइल के वो लोग जो तौरात और इंजील में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ छुपाते थे, यहाँ उन्हीं का तज़किरा है कि वो अल्लाह की आयतें छुपाते हैं और इसके बदले में दुनिया की जलील कीमत लेते हैं, कि दुनियावी मफादात की खातिर वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शानें छुपाते हैं। तो फरमाया कि ये जो पैसे लेके, माल लेके, मफादात लेके खाते हैं, तो ये इनके पेटों में खाना नहीं जा रहा, इनके पेटों में आग जा रही है, क्योंकि हराम जो पेट में जाता है वो जहन्नम की आग जा रही है। और फरमाया कि इनके पेटों में आग भर रही है, और अल्लाह ताला कियामत के दिन ना तो इनसे रहमत का कलाम फरमाएगा ना इन्हें पाक करेगा। तो कियामत के दिन इनसे खुदा ताला कोई नरमी के साथ बात नहीं करेगा, ना इन्हें पाक करेगा, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इसके बाद फरमाया उलाइकल्लज़ी नश्तरौ अद-दलालत बिल-हुदा वल-अज़ाब बिल-मग़फ़िरति फ़मा अस्बरहुम अल-नार। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और बख्शिश के बदले अजाब खरीद लिया, तो ये कितना आग को बर्दाश्त करने वाले हैं। ये जो लोग खुदा की आयतें छुपाते हैं, फरमाया हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली और बख्शिश के बदले अजाब खरीद लिया, इनके तिजारत, इनके सौदे और इनके मुनाफे की हकीकत ये है। तो फरमाया कि ये कितना आग को बर्दाश्त करने वाले हैं। मुराद ये कि ये लोगों के अतबार से एक हैरत अंगेज अमल है कि ये वो काम कर रहे हैं जिनको आग में ले जाने वाला है, तो इनको कितना सब्र है आग के ऊपर। उसके बाद फरमाया ज़ालिक भी अन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक व इन्नल्लज़ीन अख्तलफू फिल किताब लफी शिक़ाक़िन बईद। ये सजा इसलिए है कि अल्लाह ने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई, और बेशक किताब में इख्तिलाफ करने वाले दूर की मुखालफतों जिद में है। ये हैं फरमाया इनकी सजा की वजह कि खुदा ने तो हक के साथ किताब उतारी और ये इख्तिलाफ में पड़े हुए। इसके बाद की जो आयत है इसे आयत बिर कहा जाता है। बिर का मतलब नेकी, और इसे अबवाबुल बिर भी कहते हैं, नेकी के बहुत से दरवाजे हैं। इसमें बहुत सारी नेकियों का बयान है। इरशाद फरमाया लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिकि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर والملائكه والكتاب والنبيين واعطى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون। اصل نیکی یہ نہیں कि तुम अपने मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور خصوصاً مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ ہے نیکی کی کتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنا جھگڑا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، ان کی بات اسی پہ اٹکی ہوئی تھی کہ جناب قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہی نیکی ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، فرمایا کہ یہ اصلی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، تو یہ تو خدا کا حکم تھا، خدا نے ادھر کا فرما دیا تو ادھر منہ کر لو، ادھر کا فرما دیا تو ادھر منہ کر لو، تو یہ ان جھگڑوں میں نہ پڑو۔ اصل نیکی کیا ہے؟ فرمایا اصل نیکی ہے ایمان اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ان پر ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، اصل نیکی یہ ہے، یہ شرط والی نیکی ہے، اس کے بغیر تو نیکی کوئی قبول نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی محبت میں مال دینا رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو جو مستحق ہوں، اسی طرح جو غلام وغیرہ غلامی میں ہیں ان کو آزاد کرانے کے اندر، فرمایا ان بیچاروں پہ، ان مستحقوں پہ خرچ کرنا، یہ ہے اصل نیکی۔ پھر اس کے بعد فرمایا نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہے نیکی۔ پھر فرمایا کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، عہد کیے ہوئے کو پورا کرو، یہ ہے نیکی۔ پھر فرمایا مصیبت میں، سختی میں، بیماری میں، جہاد کے وقت صبر کرنا، یہ ہے نیکی۔ فرمایا نیکی کے کام یہ ہیں، یہ کرنے والے کام کرو، وہ جو بحثیں ہیں اسے چھوڑ دو، بحثوں کو چھوڑ دو کہ جناب ادھر منہ کرنا تھا، ادھر منہ کرنا تھا، وہ خدا نے طے کر دیا، اس کے بعد آپشن ہی کوئی نہیں، لہٰذا اب جو ہے وہ ان کاموں کی طرف آؤ جو کرنے کے کام ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ ہے خدا کا معیار، یہ ہے خدا کا طریقہ۔ تو بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفے میں پڑے رہتے ہیں، لاجک میں پڑے رہتے ہیں اور رنگ برنگے نقطے نکالتے رہتے ہیں، کرتے ورتے کچھ بھی۔ تو نماز کے ہزار نقطے بیان کرنے سے بہتر ہے نماز پڑھ لینا، اور دین کے احکام کی لاجکس کے اندر ہی پڑے رہنے سے بہتر ہے خود دین کے احکام پہ عمل کرنا۔ تو لہذا یہ فلسفیاں اور یہ چیزیں جو ہے یہ بعد کی باتیں ہیں، ہاں حسن نیت سے کرے، اس کے اپنے احکام ہیں، لیکن اسی ٹو میں پڑے رہنا، باریکیوں میں پڑے رہنا، بال کی کھال اتارنے میں لگے رہنا، یہ نہیں، کرنے کے کام کرو۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات دل میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کرنے کے کام تو کر لو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے رہتے ہو اور جو سیدھے سیدھے کام ہے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ تنکوں کا پوچھنا اور شیطیر کا نہ پوچھنا یہ بڑا عجیب ہے۔ حقوق العباد برباد کر کے رکھ دیے لوگوں نے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو کہ دوسروں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، کو خدا کا خوف کریں، دوسروں کو تنگ نہ کریں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز کا ایسا پوچھیں گے کہ بس الامان والحفیظ۔ تو لہذا جو سیدھے سیدھے حرام ہیں ان سے بچیں، اور جو سیدھے سیدھے شریعت کے احکام ہیں اس پہ عمل کریں۔ ہاں اس کے ساتھ باقی جو تقوی کی باریک باتیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن